अब इसके बाद अरब की कुछ बातें आ रही हैं, तीन तकरीबन आयात हैं जिसमें अरबियों का तस्करा। देखिए ज़रा इनको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा, बल्कि ऐसा करते हैं पहले बता देती हूँ कि जब नबी सल्लम मक्का से मदीना आए, मक्का मदीना इन दोनों के हालात तो हमने जान लिए, लेकिन अभी तक जो साइड्स पे रहने वाले लोग थे ना, कस्बों में, देहातों में, जंगलों में, वो इस्लाम की तरफ नहीं आए थे। लेकिन जब ख़ास तौर पर मक्का फ़तेह हुआ, फिर इसी तरह तबूक का ये सफ़र हुआ, तो अब करीब करीब से कुछ लोगों ने तो ये समझ लिया कि अब हो ना हो हमें भी मुसलमान होना ही पड़ेगा, जिसको आप कह लें पीयर प्रेशर, वो मुसलमान हो गए। कुछ वाकई सच्चे दिल से इस्लाम को मान गए, मरूबियत था आगे दिल में कि वाकई सच्चा दीन यही है। ऐसे ही जैसे नया कोई कोर्स अनाउंस हुआ, कोई ना आया, वही आए जिनके दिल में तड़प थी। लेकिन जब लोगों ने देखा कि अच्छा जा रहा है, दूसरे भी आएंगे, तो कई आने लगते हैं। कुछ लोग ज़रा ज़्यादा ही मुख्तात होते हैं, वो पहले दूसरों को तजुर्बा करने देते हैं फिर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो निफाक के साथ आगे थे। तो अल्लाह ताला यहाँ से ऐसे ही कुछ लोगों की मुख्तलिफ़ किस्मों को बयान करते हैं। फरमाया अल आराब अशद्दु कुफ्रं व निफाकं व अजदरु अल्ला यालम हुदूद मा अन्ज़लल्लाहु अला रसूलिही। आराबी ज़्यादा सख्त हैं कुफर और निफाक में, और हकदार हैं कि ना जाने वो अहकामात जो नाजिल किए अल्लाह ने अपने रसूल पर। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। ये अरबियों की कौन सी किस्म थी? लफ्ज़ अरबी जो है ना, ये जमा भी है वाहिद भी है। कोई ये ना समझ ले कि ये अरब की जमा है, बात लोग करते हैं ऐसी गलती। याद रखिए कि अल अराब अरबी लफ्ज़ की जमा नहीं है, वरना आप तो हर अरबी को अरबी बना देंगे। बल्कि अराब असल में इसम जमा होता है, जो वाहिद के लिए भी आता है और जमा के लिए भी और सब चीज़ों के लिए आता है। और जैसे जैसे अनसार से जमा अंसारी बनती है ना, तो अराब से अराबी होती है। एक शख्स को अराबी कह देते हैं, जमा के लिए आए तो लफ्ज़ अराब आता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो ज़्यादा सख्त हैं कुफर में और निफाक में, और ज़्यादा सख्त हैं कि अल्लाह की हदों को ना पामाल, हदों को ना जाने। आप देखिए कि शहरों से दूर रहने वाले जो लोग होते हैं ना, अमूमन इल्म और उलमा से दूर रहते हैं, जानवरों में रहते हैं, खाना पीना मेहनत करना इनका शुआर होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जहालत और सख्ती आ जाती है, सख्त दिल होते हैं। आप किसी शहर में रहने वाले शख्स को 10 किलो का वज़न उठा के चलने का कहें तो वो 15 मिनट में थक जाएगा, और किसी अरबी को आप शायद 40 किलो भी उठवा दें तो उसको चुभेगा नहीं। ये एक माहौल का एक असर होता है। जो जानवरों में रहता है ना, वो जानवरों की तरह भांत भांत की बोलियां बोलेगा, जहाँ बैठे ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, पता ही नहीं हमारी बातें को सुन रहे कि नहीं, हम कैसे लग रहे हैं। इसके बरक्स एक पढ़ा लिखा मुहज़्ज़ब शख्स है, वो बोलता है तो सोचता है कि मेरी आवाज़ तो नहीं सब में गूंज रही, मैं हंसता हुआ कैसा लग रहा हूँ, मेरे हाथों के इशारे कैसे लग रहे हैं, मेरा चलना मेरा फिरना कैसा होता है। तो अल्लाह सुबहान ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब एक और गिरोह से भी मुख्तात कर दिया कि कुछ लोग अब ऐसे हैं जो इस्लाम की तरफ दूसरों को आता देखकर देखे देखते मुसलमान हो गए। इनका दिल इस्लाम वाला नहीं है, है अंदर कुफर भरा हुआ, बिल्कुल जैसे अब्दुल्ला बिन उबई सिर्फ जान बचाने के लिए मुसलमान हो गया हुआ था, इस तरह इनके भी अंदर कुफर भी है, निफाक भी है, ज़्यादा सख्त हैं और ये अल्लाह की हदों को नहीं जानते। आप देखिए कि दो किस्म के गिरोहों ने हर दौर में इस्लाम की हदों को तोड़ा है। एक बहुत पढ़े लिखे लोगों ने, इंतहाई मालदार, बहुत इन्फ्लुएंस रखने वाले ट्रेंड सेटर्स, बड़े बड़े जिनको खूब बातें करनी आ जाती है, खादू या खुदू वाली कैफियत, हर वक्त दीन में नुक्ते, इस्लाम की बातें, मौलवी की बातें, दाढ़ी का मजाक, सुन्नतों का मजाक। एक उधर हदें टूटती हैं। आज के दौर में हदें टूटने को अगर आप औरतों के नाते से लें तो फैशन, बेहयाई, जिस्म की नुमाइश एक ऐसे तबके में हो रही है कि जो बिल्कुल आखिरी हदों पर पहुँच गया दुनिया की तालीम और दौलत में। एक दूसरी तरफ भी हदें टूटती हैं, और वो कहाँ है? जहालत, गुर्बत, इल्म का नाम नहीं। आप देखें एक मासी घरों में काम करने वाली, उसका हाल उलिया भी कोई किसी कैट वॉक करने वाली से कम नहीं होता। उसको भी नहीं परवाह खुश होती कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मुझे घर से निकलते वक्त अपने आप को कैसे रखना है, फिर बातचीत में। फिर आप देखिए कि अमूमन ये जो बात है कि शहरों में बेहयाई और फैशन फैलता है, आप जाके देखें तो साइड इश्यूज़ में इन साइड्स पे ज़्यादा मुनाफ़त है, गंदगी है, इनको होश नहीं, हलाल हराम का फ़र्क नहीं, रिश्तों तक की तमीज़ नहीं है, जो चीज़ें سامنے آتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ جہاں دین کا دور دورہ ہے وہ لوگ تو بہرحال دونوں ہی جگہ اچھے ہوں گے. نہ کسی کا شہری ہونا کوئی خوبی ہے اور نہ کسی کا دیہاتی ہونا کوئی وجہ ہے. اصل بات کیا ہے کہ لا یعلمون, لا یعلمون. علم نہیں ہوگا تو دیہاتی اور برا ہو جائے گا, اور علم زیادہ ہوگا تو شہری اور برا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے تمام لوگوں کی باتیں بیان کر کے اللہ کے نبی کو مختاط کرتے ہیں کہ ان پہ زیادہ اعتبار نہ کیجیے گا, یہ بہت کھوٹے لوگ ہیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے, خوب حکمت والا ہے. اللہ نے ہر ایک کو مختلف جگہ دی, مختلف جگہ پہ رکھا. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ میڈیا نے تو کسی کو دیہاتی اور شہری چھوڑا ہی نہیں. میرا خیال ہے کہ فیشن اگر کسی لبرٹی کی مارکیٹ میں ایک آتا ہے تو وہی ٹی وی کی سکرین سے کسی گاؤں کی مارکیٹ میں بھی آ جاتا ہے. گاؤں کے آئی ہوئی لڑکی نے ان کو تانا دیا کہ آپ آئی برو نہیں بناتی, تو پھر ان کو احساس ہوا کہ میں کہاں کھڑی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھیں کہ حقوق کی پامالی دیکھیں, جائیداد کے مسئلے دیکھیں, وراثت کی بانٹ دیکھیں, عورتوں پہ ظلم, مردوں کی باتیں, یہ زیادہ وہاں ہوتا ہے جہاں علم نہیں ہوتا. جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, کئی لوگ تو پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں, لیکن جس بندے کا علم سے کوئی تعلق ہی نہیں, جو جہالت میں پڑھا, اس کا حال کیا ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ ایک جہالت ہوتی ہے دنیاوی علم نہ لینا, جس کی بات ہم اس وقت کر رہے ہیں. ایک دوسری بھی جہالت ہوتی ہے, دنیا کا علم بہت بڑھ گیا لیکن دین کا علم نہیں ہے, تو وہاں بھی وہ پامالی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تمام لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختاط کرتے ہیں. پھر فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. اور بعض بدو ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ تو تاوان ہے, یعنی جرمانہ دینا پڑ رہا ہے ہم کو, اور منتظر ہے تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے. حقیقت میں انہی پر ہے بری گردش. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. ایک اور چیز جو علم کی کمی کی بنیاد پہ ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے. عربیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو خاص طور پہ زکوٰۃ کے لیے جب کہا گیا زکوٰۃ دیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں, تو ان کو وہ اتنا بوجھل لگا کہ جیسے کسی سے کوئی ٹیکس لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں انہی کی بات کر دی کہ ان کے دل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی خواہش نہیں ہے. یہاں لفظ دیکھیے مغرمن آیا ہے, غین رو میم سے ہے. پیچھے پڑ چکے ہیں یہ لفظ کہیں, بہت قریب کے دور میں گزرا ہے آپ کے. چلیں زکوٰۃ کی تقسیم میں گزرا. والغارمین, غارم کون تھے؟ مکروز. ہاں غرمہ غرامہ آگے بھی آئے گا سورۃ کہف میں بھی. تو یہاں کیا ہے مغرمہ, مغرم کہتے ہیں کس چیز کو, کہ جس ایسا خرچ جس کو کوئی اپنے اوپر بہت بوجھل سمجھے, بڑے ٹوٹے دل سے دے, ذرا دل نہیں چاہ رہا دینے کو لیکن دے. دین کے راستے پہ کوئی ایسا خرچ جو بندے کو اتنا برا لگے کہ بس جان چھڑانے کے لیے دے, وہ مغرم ہے. ان کا حال بھی یہ تھا. پیچھے تو آپ دیکھا کہ مخلص صحابہ کرام نے ایسے موقعوں پہ سب کچھ لا کے رکھ دیا, لیکن یہ جو تھے یہ اتنے تھڑ دلے تھے, چھوٹے دل کے تھے, کہ کچھ دے بھی رہے تھے تو پٹک پٹک کے مار رہے ہوں گے کہ لے لو اب اور تمہیں کیا ہم سے چاہیے. یہ تربس رو باسواد سے ہے, پیچھے بھی گزر چکا یہ لفظ, ربسن سے تربس. ہاں دوائر کو دیکھ لیجئے, یہ تھوڑا سا نیا لفظ ہے. دوائر کا لفظ جو ہے یہ دائرہ کی جمع ہے, اور عربی لغت کے اعتبار سے دائرہ اس بدلی ہوئی حالت کو کہتے ہیں جو پہلی اچھی حالت کے بعد بری ہو جائے. آپ کہہ سکتے ہیں پہلے کوئی بڑا کھاتا پیتا تھا, بڑے اچھے حالات تھے اس کے, پھر بعد میں برے ہو گئے. ٹھیک ہے, اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے علیہم دائرۃ السوء کہا کہ ان کے اوپر بری گردش ہے. یہ وہی لفظ ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں گردش ایام, وہ بری حالت جو اچھے حالات کے بعد آئے, حالات کا بدلنا گردش ایام. یا اصل میں اب ان منافقوں کے دل کے پول کھولے گئے کہ بظاہر تو اللہ کے نبی کے ساتھ لگے ہوئے تھے, آپ کے سامنے آ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے, لیکن دل کی حالت کیا ہے کہ کہتے تھے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, کب نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے, کب مشرکین آپ کا کام تمام کر دیں, کب یہ بنا بنایا سارا سلسلہ ختم ہو اور ہماری جان چھوٹے. دیکھیے منافق مالی فائدوں کے لیے جب مسلمان ہوتا ہے نا, تو فائدے تو ختم ہو گئے, اب تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی, عشر بھی دینا پڑے گا, صدقہ بھی دینا پڑے گا, تو اب جان چھڑانا چاہتے تھے کہ کسی طرح خرچ ہماری زندگی سے نکل جائے. دیکھیے کچھ لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے بڑے نیک ہوتے ہیں, कुछ लोग हज के लिए भी नेक होंगे, कुछ जान के लिए, जान लगाने के लिए भी बड़े तेज़ होते हैं दीन के रास्तों में, लेकिन उनकी कमज़ोरी माल होता है, वो माल के मामले में मुनाफिक हो चुके होते हैं। कुछ का मामला इससे अपोजिट है, कोई माल लगा के खुश हो जाता है, दे दो जान छुटो, दिल का खुला है, बाकी भी जगह रोज़ देते हैं, कोई बात नहीं, जब मॉल्स में हज़ारों खर्च कराते हैं तो दीन के काम पे भी 1,000 दे देंगे तो क्या है, लेकिन जान लगाते वक्त फंसता है। बचेगा वही बंदा जो जान और माल लगाएगा, और जो दीन के मामले में बुरी बातें सोचे कि बस अब ये काम तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। उसको पता है कि अल्लाह ने नबी को कब फौत करना है, कब अबू बकर और उमर फ़ारूक के हाथ में इस दीन की बागडोर आनी है। तुम कुछ भी कर लो, असल बात जहाँ उन मुनाफिकों की है जो कुर्बानी के बग़ैर, कुछ दिए बग़ैर अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, कुछ करने का सोचने की बजाय जान बचाने के बहाने बनाते थे। अब देखिए कि दो तरह के लोग होते हैं ना, एक ये कि आज वेदर बड़ा ख़राब है, कुछ अफसोस हो रहा होता है उनको कि हाय छुट्टी करनी पड़ेगी, आज स्कूल बंद हो जाएंगे, और कुछ बच्चे खुश हो रहे होते हैं कि अच्छा आज छुट्टी होगी, हम घर में बैठेंगे मज़े करेंगे। तो मुनाफ़िकत बचगाना सोच का दूसरा नाम है, बिल्कुल कम होते हैं इनके अंदर, समझ नहीं होती और पीछे रहते हैं। अब यहाँ तक तो मुनाफिकीन की बुरी दो बातें हैं ना, इन दो आयात में अरबियों में से मुनाफिकीन का तस्करा था कि जिनके अंदर इस किस्म की बातें थी, जिनको माल के ऊपर जिनकी नज़रें थी और कुछ अपनी जान की बचाने के लिए थे, लेकिन अब अगली आयत में इन्हीं में से एक अच्छे गिरोह का तस्करा है। इससे क्या पता चलता है कि हर गिरोह में हर तरह के लोग होते हैं। फरमाया वमिन अल आराबी मैं यूमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और आराब में से कुछ देहातियों या बदुओं में से कुछ ऐसे भी हैं। देखिए पहले दफ़ा जब आराब आया था ना, तो उससे पहले मिन नहीं था, अगर आप आयत 97 को देखें, बस अल्लाह आराब आ गया, सारे ही आराब मुराद लग रहा है इससे। लेकिन दूसरी में आया वह मिन कहते हैं बास को, सम ऑफ, कुछ ऐसे भी हैं, यानी कुफर और निफाक तो था लेकिन उनमें से कुछ के दिल में माल की मोहब्बत ज़्यादा ही थी। अब इन्हीं में से कुछ और ऐसे हैं जो मैं यूमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और यौम आखिर पर ईमान लाते हैं, वयत्तखिज़ु मा युन्फिकु कुरुबातिन इंदल्लाह, और जो ख़र्च करते हैं कुर्बे इलाही के लिए, वसलवातिर रसूल, और रसूल पाक की दुआएं लेने का ज़रिया समझते हुए। यानी ये अल्लाह पर जब ईमान ले आए, इनको पता चल गया रब इतनी बड़ी यूनिवर्स का मालिक है, इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज का मालिक, इतने बड़े सैयारों, सितारों, सूरज, चांद का रब है, उसको हमारे इन चंद टकों की क्या ज़रूरत है। तो ये तो खुशी खुशी लेकर आते हैं ताकि कुरुबात, इन अल्लाह की कुर्बत मिल जाए। कुरुबात जो है ये जमा है कुर्बत की, काफ रबा से इसम मस्दर है। यहाँ इशारा है सदका और ज़कात की तरफ, जो कि अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया बनता है, और नेकी के हर उस काम को यहाँ आप ले सकते हैं जिसके बाद अल्लाह का कुर्ब मिले। जैसे एक हदीस में आता है कि अस्सलात कुर्बानियत लिकुल्ली मोमिन, कि नमाज हर मोमिन के लिए अल्लाह से कुर्ब का ज़रिया बनता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो माल ले ले के फिर रहे हैं कि प्लीज़ अल्लाह ताला आप इसको कबूल कर लीजिए, और नबी को क्यों देते हैं, ताकि नबी से दुआएँ लें। सलावात का लफ्ज़ जो है सलातुन की जमा है, दुआ के लिए भी आता है, नमाज के लिए भी आता है, और रहमत कमाने के लिए भी आता है। अल्लाह नबी को कह रहे हैं कि आप इनसे ले लें, पीछे हम पढ़ चुके खुस मिन अमवालिहिम सदक़तुन, आप ले लें इनके मालों में से। अब देखिए कि जब भी नेकी का मौका आता है ना, तो समझदार लोग जो होते हैं उस मौके को, उस हुक्म को सुनकर खुश हो जाते हैं, कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है मौका मिला, कोई तो अमल का मौका मिला, कुछ हमें भी अल्लाह की कुर्बत मिल जाए, कुछ हमें भी दुआएँ मिल जाएँ अल्लाह के नबी की, हाँ, और कुछ की जान पर पड़ जाती है। तो यहाँ इस आयत में सदक़े के दो फवायद बताए गए, नंबर एक अल्लाह का कुर्ब, और दूसरा दुआओं की कबूलियत। और नबी सल्लम की आदत मुबारक थी कि जब कोई सदका खैरात लेकर आता तो आप उसके लिए दुआ करते। एक मौके पे अबू औफ ने सदका किया तो आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला आली अबी औफिन, के अल्लाह अबी औफा के जो घर वाले हैं उन पर अपनी रहमतें भेज। तो किसी की दुआएँ लेने के लिए खर्च करना क्या ये शिर्क नहीं है? तो देखिए कि किसी की दुआएं मिल जाती हैं खुद ही, दुआएं ली नहीं जाती, दुआओं के लिए कहा नहीं जाता बल्कि दुआएं ली जाती हैं। इस तंगी के वक्त में जब अल्लाह के नबी इस्लाम के लिए एक جہاد کے لیے نکل رہے ہیں اور اسلام کے لیے ایک ایک پینی کی ضرورت تھی, تو اگر کوئی لا کے اسلام کے نام پہ دیتا ہے تو مشن اللہ کے نبی کا تکمیل ہو رہا ہے, دعائیں تو وہ خود ہی لے رہا ہے.